हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 22। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए मन से समस्त भौतिक आसक्ति मलिनता और बुद्धि से समस्त भौतिक विचारों का परित्याग करके मन और बुद्धि को गुरु और कृष्ण के चरणों में समर्पित करके पूरी भाव और श्रद्धा के साथ मंगलाचरण करिए ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। चैप्टर नंबर 18 टेक्स्ट नंबर 22। भगवान कहते हैं यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन् कार्ये सत्तम अहैतुकम् अतत्वार्थ पदल्पं च तत्तामस उदाहृतम्। फिर से यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सत्तम् अहैतुकम् अतत्वार्थ वदल्पं च तत्तामसं मुदाहृतम्। फिर से यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सत्तम् तम अहै तुकम् अदत्वाथ वदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। एक बार लास्ट। यत्तु कृष्ण वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अदत्वार्थ वदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। शब्दों का अर्थ देखिए। यत् माने जो, तू माने लेकिन। जब तू आता है ना, इसका मतलब होता है पहले वाले श्लोक के साथ उसको भगवान है ना कंपेयर करके बोलते हैं, ऐसा है लेकिन अगर ऐसा हो तो ऐसा हो। ऐसे दो बातें जब होती है ना तो लेकिन आता है तू जैसा, ठीक है। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के विषय में बता रहे हैं कि कौन सा ज्ञान कैसा होता है, और भगवान ने पहले क्या बताया हमें 20 में, सर्वभूतेषु येनैकं भावं अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक मानो। अब उसने क्या बताया कि सारे जीवों में एक ही आध्यात्मिक प्रकृति आत्मा और परमात्मा का अंश आपको देखना है, तो वो सात्विक ज्ञान है। आगे भगवान ने बताया 21 में, पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नाना भावान् पृथग् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम् विद्धि राजसम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। भिन्न भिन्न शरीर देखता मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सांसारिक बहस करते हैं, अपने अपने तर्क देते हैं, अपने अपने सिद्धांत बनाते हैं कि भाई ऐसा है, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये अपने हैं वो पराए। इस तरह जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखते हैं ना, अलग अलग उनके साथ मेंटेलिटी से कार्य करते हैं, तो भगवान ने कहा ये सब राजसी है, तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करते हो। लेकिन अब आज के श्लोक में आया ना यत्तु, और भगवान ने क्या कहा, यत्तु कृष्ण वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अदत्वार्थ वदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। यत्तु लेकिन कृष्णवत् कृष्ण का क्या मतलब होता है, कंप्लीट रूप से एकस्मिन् मतलब एक ही चीज को कंप्लीट समझो, बस और किसी को आप किसी के साथ कंपेयर नहीं करो, बस एक ही चीज जो तुम्हारे पास है आप समझो बस यही कंप्लीट है, और कुछ संसार में है ही नहीं, बस यही सबसे परफेक्ट चीज जो मेरे पास ज्ञान है, उससे ज्यादा किसी के पास कुछ है नहीं, किसी को कुछ मानो ही नहीं। यत्तु कृष्ण वदेकस्मिन् कार्य सक्तम अहितुकम्। कार्य मतलब कार्य में, सक्त मतलब आहिस्त आसक्त होता है, अहितुकम मतलब बिना हेतु के, उसको उस कार्य से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कार्य इतना अच्छा है जिससे उसको फायदा होगा, बस एक ही कार्य है बिल्कुल बेफायदा फिजूल का कार्य होगा, और उसी को वो अपना हित सबसे अच्छा समझेगा कि यही वाला कार्य जो है वो उसी से चिमटा रहेगा बस, और कुछ ज्ञान हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, बस समझेगा कि मैं ही परफेक्ट हूँ, मेरा ज्ञान एकदम परफेक्ट है और मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो एकदम सही है। तो ये भगवान बता रहे हैं, यत्तु कृष्ण वदेकस्मिन् कार्य सत्तम हेतुकम्। एकस्मिन कार्य मतलब एक ही कार्य को जो उसके हित का भी नहीं है उसको ही सब कुछ समझ जाए, पूर्ण उसी को समझता है। और आगे भगवान कहते हैं अतत्वार्थ वदल्पम च। अतत्वार्थ के विषय में भगवान ने बताया है वास्तविकता के ज्ञान से रहित, मतलब अर्थवाद है वो, बस अर्थवाद है, कुछ भी रियलिटी नहीं है उसके अंदर, बस उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया है कि बस इसी से मेरा कल्याण होने वाला है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है, वास्तविक ज्ञान से बिल्कुल ना वो रहित है। और आगे क्या बोलता, अतत्वार्थ अतत्वार्थ वद अल्प, अल्प का क्या मतलब होता है? अल्प का मतलब होता है बिल्कुल जो थोड़ा सा हो, जिसके अंदर कोई भी कम्प्लीक्स, एकदम जरा सी चीज को बोलते हैं अल्प, अल्प बुद्धि होती है ना, अल्प ज्ञान होता है। तो ये अल्प ज्ञान ऐसा है जो जिसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ज्ञान होता है, समझो ना होने के बराबर होता है, उसको पता ही नहीं होता है रियलिटी क्या है और ना शास्त्र क्या है, बस अल्प होता है, जरा सा तुच्छ होता है बहुत। और तत्तामस ऐसा जो होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत्तामस मोदारतम, ऐसे ज्ञान को क्या कहना है? तामसी ज्ञान कहना है, वो तामसी ज्ञान होता है। तामसी ज्ञान क्या करवाएगा? और तमोगुण के विषय में भगवान श्री कृष्ण 14.8 में बता चुके हैं, भगवान ने कहा इसका क्या रिजल्ट निकलेगा यदि तुम तमोगुण में रहकर कार्य करोगे। तो भगवान ने कहा तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्ने भत्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, तमोगुण क्यों हो रहा है? अज्ञान की वजह से। यहाँ पर भी यही बताया ना भगवान ने कि एक ही यत्तु कृष्णं वदत, क्या बताया कि यत्तु कृष्णं वदे कस्मिन् कार्य मुक्त संग, कि एक ही उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, एक ही चीज को सब कुछ समझ रहा है। तो यहाँ पर भी भगवान ने इस बात को भी पहले ही बताया ना कि तमस्त्वज्ञानदं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। ये क्या होता है? ये अज्ञान से उत्पन्न होता है और देहधारी जीव आत्मा को मोहित कर देता है, वो उसको गुमराह कर देता है, उसको रियलिटी तक जानने ही नहीं देता है, उसको वहीं पर टिका के रखता है, एक ही चीज में सब कुछ समझता है, बस यही सही है। तो ऐसे ऐसे गुण मोह, यानी कि देहधारी जीव का मोह है, इस गुण के प्रतिफल क्या है, यानी कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है? अगर आप तमोगुण में कार्य करते हो, तमोगुण वाला आपका ज्ञान होता, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? पागलपन, आलस्य, नींद, सुस्ती और बद्ध जीव बन जाएंगे इसी में। और आगे तो भगवान ने बताया 14.15 में, भगवान श्री कृष्ण ने 15 की सेकेंड लाइन देखिए, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। और भगवान ने कहा अगर आप तमोगुण, यानी तमोगुणी आपका ज्ञान होगा, उसमें यदि आप मर जाओगे, यानी कि कंटिन्यूस आपने जिंदगी में यही ज्ञान लिया, तो यहाँ पर बताया जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म लेता है। अब जाहिर सी बात है जो गुण होगा उसी में हम लोग मृत्यु हो जाएगी, और फिर भले हम मनुष्य हैं लेकिन तमोगुणी अगर हमारे अंदर तमोगुण विकसित हुआ होगा तो फिर भले वो ज्ञान उसको समय, भगवान ने क्या बताया, ज्ञान के विषय में बताया। ये अज्ञानता भी भगवान ने ज्ञान की कहा है कि अज्ञानता जो है वो तमोगुणी ज्ञान है, समझो तमोगुण लोग इसको ज्ञान बोल रहे हैं। तीन प्रकार के ज्ञान के विषय में बता रहे हैं ना, अनुवाद देखिए, वो सुंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और वह ज्ञान, ऐसा ज्ञान है ये, भगवान ने साफ साफ कहा है, कितना प्यारा वर्ड भगवान श्री कृष्ण ने यूज किया है, यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहितुकम् तत्त्वार्थम वदल्पम् च तत्तामसमुदाहृतम्। ऐसा तामसी ज्ञान है, कैसा ज्ञान है? जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, कोई भी एक कार्य को वो समझता है कि बस यही कार्य मुझे करना चाहिए, और उसको वो बहुत ही हीन है, मतलब उसमें कोई भी शास्त्र विधि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वो समझता है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता। सत्य को कैसे जाना जा सकता है? जैसे हमने भगवान पहले हमें बताया गया, देखो सिर्फ और सिर्फ गुरु साधु और शास्त्र ये आपको सत्य बता सकते हैं। यदि आप उनकी बात पर विश्वास ना करके अपने कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखो कोई लोग मुझे अक्सर बोलते हैं हमारे बड़े ऐसा करते थे, आपके बड़े अगर उन्होंने गुरु नहीं किया है, अगर उन्होंने शास्त्र अध्ययन नहीं किया है, यदि उन्होंने साधु संग नहीं किया है, तो वो जो कर रहे थे वो अज्ञानता में कर रहे थे। तो आपको उन्हें फॉलो नहीं करना है, आपको गुरु साधु और शास्त्र को, क्योंकि पतन हो जाएगा आपका मनुष्य जीवन का, सर्वनाश हो जाएगा यदि आपने शास्त्र को नहीं समझा, यदि आपने गुरु के वचनों को नहीं समझा। और भगवान ने कहा ऐसा ज्ञान जो आप ये समझते हो भाई मेरे बड़े लोग ने यही किया है, अब मुझे वही करना है, और भगवान ने कहा ये बहुत तुच्छ है, बहुत हीन है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और भगवान ने यहाँ पर बताया सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। ये होता है सत्य को जाने। कुछ लोग बोलते हैं ना भाई मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, अभी हम लोग हमारे शुरू से ये ऐसे करते आए हैं तो हम कैसे अभी कृष्ण की भक्ति स्टार्ट कर लें। जब कृष्ण भगवद गीता में साफ साफ कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षेषा, जब मैं तुम्हें सारे कष्टों से तुम्हारा निवारण कर लूंगा, तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा, तुमको खाली मेरी शरण में आना है, तुमको खाली मेरी भक्ति करनी चाहिए, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानामि। तो अगर भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि योग क्षेमं वहामि, मैं तुम्हारे योग और क्षेम का वहन करूंगा, भगवान ये कह रहे हैं कि तुमको दूसरों को छोड़कर मेरी शरण में आना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही भक्ति करनी है, मेरी पूजा करनी है। और अगर हम बोलते हैं कि नहीं भाई भगवान भले जो भी कहता रहे हम तो वही करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने हमारे भरों ने किया, हमारे बाप दादा ने किया, तो भगवान कहते हैं कि वो बहुत तुच्छ बात है। आप भगवान भी ये कहते हैं कि हमें मेरी शरण में आओ, गुरु भी कहते हैं भगवान की शरण में जाओ, साधु भी कहते हैं कि आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, उसी से आपका कल्याण होगा। लेकिन फिर भी हम किसी एक चीज पर चिमट कर बैठ जाएं कि नहीं भाई ये भले जो भी कहते रहे मैं तो वही करूंगा जो कि मुझे पहले से समझ में आ गया। यानी कि भगवान ने कितना अच्छे तरीके से बताया है कि सत्य को जाने बिना आप सत्य को जानने का बिल्कुल प्रयास भी नहीं करते हो। आप देखो तो सही, जो चलो ठीक है किसी की बात नहीं मानो, आप शास्त्र को तो देखो, आप सत्य को देखने की कोशिश तो करो, आप पहले देखो तो सही जो आप कर रहे हो क्या वो वाकई में सही है, वही आपको करना है। यदि वो आप सत्य को नहीं देखोगे, मनुष्य बनने का लाभ क्या है यदि आप शास्त्र को नहीं समझ रहे हो, यदि आप है ना शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हो, वही इसी बेवकूफ वो वाले कार्य कर रहे हो जो बस समझ दिखता है, जो उसी को समझ रहे हो सत्य और उसी को प्रणाम कर रहे हो, चमत्कार को नमस्कार कर रहे हो, पता नहीं है वो चमत्कार तो कितना टेम्पररी है, उसका कोई भी आपको लाभ नहीं होने वाला है। जो वास्तविकता है उसको जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे, भगवान ने कहा सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। श्री प्रभुपाद जी कितना सरलता से इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम सब तमोगुण में ही उत्पन्न हुए हैं, जब से उत्पन्न हुए हैं तमोगुण में। सबसे बड़ा तमोगुण क्या है कि हम अपने आप को यह शरीर समझते हैं और इस शरीर से रिलेटेड सारी चीजों को इम्पोर्टेंट देते हैं। तो शरीर से रिलेटेड शरीर समझना सबसे बड़ी अज्ञानता है और हम इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं सामान्य मनुष्य का ज्ञान समय सदैव तामसी होता है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता है ना, ज्ञान ही अज्ञानता है। सब भले आप शरीर से रिलेटेड कितना ही ज्ञान क्यों ना हासिल कर लो, आपको इससे सुख मिलने वाला है, आप ये चीज प्राप्त कर लो तो आपको है ना ये सुख मिलेगा या फिर इससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। सारा संसार देखो आप, भगवान ने क्या कहा सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव जो भी यहाँ पर बद्ध जीव संसार में आए हैं वो अज्ञानता में तमोगुण में ही है। वो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं और शरीर को सुखी करने के लिए कार्य करते रहते हैं तो वो कौन सा ज्ञान है? सीधा सरल बात है, सब तमोगुण में है, सदैव तामसी है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है, उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती है, उसके लिए धन ही ईश्वर और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्टि करना है। श्री प्रभुपाद जी कितना अब और ये 18वां अध्याय है अब, और है ना कोई आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए कोई बात ही नहीं छोड़ी है, सब कुछ क्लियर बता दिया है कि आप अपनी मर्जी से करते कब तक करते रहोगे। साफ साफ बता दिया जब भगवान श्री कृष्ण ने कि देवताओं की पूजा करने वाले, कितना सुंदर श्लोक था जो हमने पढ़ा था 17.4 में, भगवान ने कहा था यजन्ति सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि ताजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ति तामसा जना। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजन करते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूतों और प्रेतों की पूजा करते हैं। और 9.23 में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ बता दिया, ये अभ्यन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विताः दीपिमामेव कान्तेया यजन्त्या विधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है, त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। अब भगवान ने साफ साफ किया, यजंत अविधि पूर्वकम, ये विधि नहीं है, विधि वो है जो शास्त्र में लिखी हुई है। अब ये सारे शास्त्रीय प्रमाण है ना, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद ने कहा, जो व्यक्ति प्रमाणों में या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, वो बिल्कुल भी इस बात को, भगवदगीता को भी नहीं मानेगा, कोई दूसरे शास्त्र की भी बात नहीं मानेगा, और अपनी मर्जी से करेगा, शास्त्र के माध्यम से नहीं करेगा, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता ना, इतनी अज्ञानता है कि वो अपनी आत्मा को, शास्त्र उठाएंगे तो उठाते ही शास्त्र कहेगा कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, वहां उस लेवल पर आना पड़ेगा, लेकिन वो शास्त्र उठाता ही नहीं है तो उसका ज्ञान कहां तक, शरीर तक ही सीमित होता है। उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं रहती, उसे फिक्र ही नहीं रहती, वो बस ये सोचता है कि मैं कैसे अपने शरीर को खुश करूं। और ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता है शबरवर। और शबरवर ने ये भी बता दिया यहाँ पर, उसके लिए धन ही ईश्वर है, बस ज्यादा से ज्यादा मुझे पैसे जमा करने, अपने जीवन का लक्ष्य देखो। अब हम लोग देखे ना, कितने सारे लोग हैं, उन्होंने जीवन का लक्ष्य क्या बना रखा है, भले उनके पास इतने सारे करोड़ों रुपए होते भी है ना, फिर भी उनके जीवन का लक्ष्य ये होता है, मैं और भी ज्यादा पैसे कमाऊं। दान ही उनके लिए ईश्वर है। और ज्ञान का अर्थ शारीरिक अवस्थाओं की तुष्टि, आवश्यकताओं की तुष्टि, यानी कि वो क्यों एजुकेशन हासिल करते हैं, ज्ञान क्यों हासिल करते हैं, कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को और भी सुखी करूं, कैसे अपने शरीर की सब आवश्यकताओं को पूरा करूं, कैसे अच्छे से ऐसे। अब देखो आज का ज्ञान, आप देखो यहाँ पर संसार में जो ये जो साइंटिफिक ज्ञान है ना, उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आज क्या सोच रहे हैं सारे जो भी मनोवैज्ञानिक है, वो क्या सोच रहे हैं कि शरीर को ज्यादा से ज्यादा कैसे सुखी बनाया जाए। पहले पंखा चलाया, उसके बाद एसी एयर कूलर बनाया, उसके बाद है ना ये कि ज्यादा से ज्यादा आपका शरीर सुखी होना चाहिए, ऐसी कन्वेंस होनी चाहिए, पहले साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर गाड़ियां, उसके बाद एरोप्लेन, सारा का सारा ज्ञान भौतिक शरीर को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए। क्या कुछ नहीं दिया है शरीर को सुविधा पैदा करने के लिए, बस कैसे ज्यादा से ज्यादा आपकी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, बस यही जीवन का लक्ष्य, यही ज्ञान का मकसद बना के रख दिया है। और भगवान ने साफ साफ कहा, जिस मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मान, और उसी में यानी कि वही कार्य करते वक्त अगर आप ये सोचते हो कि इससे हम कैसे कृष्ण भक्ति में उन्नति करेंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है कि हमें आधुनिक ज्ञान से कोई भी फायदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वो हम भगवान की भक्ति के लिए फायदा उठा रहे हैं तो वो भक्ति है, अदरवाइज वो तो सिर्फ और सिर्फ तमोगुणी है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, जैसे मोबाइल फोन है, या फिर आप उसको खाली सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, और है ना टाइम वेस्ट करने के लिए, दूसरों के साथ बातें करने के लिए, प्रेजर पकड़ने के लिए यूज करते हो, तो जस्ट आपके टाइम और मनी का वेस्ट है, लेकिन यही अगर आप प्रचार में यूज कर रहे हो तो आपकी भक्ति है। देखना है कि हम ये कार्य जो कर रहे हैं उससे हम कितना कृष्ण भावना में अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसके लिए धन ही ईश्वर है। और ज्ञान का अर्थ क्या है, शरीर को तुष्ट करना, बस इतना। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता है। परम सत्य कौन है, सत्यम परम धीमहि, भागवतम महापुराण कैंटो 1 चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 1 में बताया गया कि कृष्ण ही सत्य है। और यहाँ पर साफ साफ बताया कि वो जो ज्ञान है उससे परम सत्य से कोई उसका संबंध नहीं है। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है, यानी कि ये सब जानवरों के जैसा है, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को कैसे आहार निद्रा भाई मैथुन से संतुष्ट किया जाए, बस ऐसा ही ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न हुआ बताया गया है। श्री शिवोपाली बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है, भले ज्ञान ही हो, भले सांसारिक ज्ञान ही हो, यदि वो शास्त्रों के अनुसार आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके साथ नहीं दे रहा है तो ऐसे ज्ञान को क्या कहा गया, वो बहुत ही तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण ने शब्द उच्चारण किया है कि अथवादल्पम च, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थवाद है, आपकी इंद्रिय को तृप्त करने के लिए ये बताया गया है, और अल्पम च ये बहुत तुच्छ है, सत्य को जानने के बारे में इसमें मतलब शास्त्र और गुरु के विषय में कुछ भी नहीं है, आप सत्य को इसके विषय में साफ साफ बताया, ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं है, यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान के तथा खाने सोने और रक्षा करने मैथुन करने जैसा ही है, ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण उत्पन्न किया गया। दूसरे शब्दों में अब यहाँ पर तीन टाइप के ज्ञान हमने पढ़े ना, उन तीनों के विषय में शिवप्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है, जो हमने बताया शुरू में टेक्स्ट नंबर 20 में, सर्वभूतेषु येनेकं भावं अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। श्री प्रभुपाद ने बताया यहाँ पर इस शरीर से परे यानी शरीर से बिल्कुल दूर आत्म संबंधी यानी मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान को प्रसन्न करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, ये ज्ञान कौन सा है, सात्विक ज्ञान है। ठीक है, जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन यानी मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले वह राजसी है, यानी कि लौकिक तर्क यानी कि जो दुनियावी बहस होती है, दुनियावी ये मेरा है वो उसका है, इस तरह जो शरीर से रिलेटेड होता है, और तथा चिंतन मनोधर्म यानी कि मन, आप ऐसा ज्ञान होता है जो मनोधर्म से उत्पन्न होता है, बस आप मनमानी व्याख्याएं करते हो, शास्त्र की भी मनमानी व्याख्याएं करते हो, नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म लेते हैं और अलग अलग बहस करते रहते हैं, बस बहस में ही तर्क और ये करते रहते हैं, तो वो रजोगुणी ज्ञान होता है, क्योंकि वो अब क्या करते हैं, बहस करके वो वही कार्य करना चाहते हैं जो इंद्रिय तृप्ति का है, यानी कि वो शास्त्र को सेंटर में रख के। ऐसा कैसे होता है बताओ, एक बार एक भक्त ने ना, भक्त नहीं था ऐसे ही था, तो राधा गोविंद महाराज की क्लास चल रही थी, बोल रहे थे कि ना हमें पशुवध नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए जानवरों को इसे काट के और इस तरह। फिर बोला, उसने बोला अगर हम लोग जानवरों को खाएंगे नहीं तो जानवर इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो हमें खा जाएंगे, इसलिए हम लोगों को फिर जानवरों को खा लेना चाहिए, और अगर मछली नहीं खाएंगे तो मछलियां समुद्र में इतनी मछलियां हो जाएंगी कि पानी बचेगा ही नहीं और सारी मछलियां ही मछलियां होंगी, फिर पानी तो हमें चाहिए होगा ना, समुद्र तो फिर खाली मछलियों से ही भर जाएगा। तो यानी कि तर्क ऐसा करेंगे ना, फिर उनको बताया राधा गोविंद महाराज ने, अपना आंसर भी बताया कि ये भगवान ने सृष्टि बनाई है ना, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि सब लोग कैसे खाएंगे, क्या मतलब सब लोग भर जाएंगे, पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी, वो आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसने जन्म दिया है ना उसने मृत्यु का समय भी लिख कर रखा है, वो तुम्हें उसके लिए फिक्र होने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी मछलियां हैं उनका आहार है, साथ साथ वो छोटी मछलियों को खाती हैं, उनका आहार है, उनको खाना होता है, और तुमको क्या लगता है जो तुम चिकन और बकरा ये काट के खाते हो वही इतने बढ़ जाएंगे कि आपको है ना मतलब इतने बढ़ जाएंगे वो हमें खाना शुरू कर देंगे, ऐसा बोला ना। बाकी जो दूसरे जानवर आप नहीं खाते हो, कुत्ते बिल्लियां, वो भी तो आप नहीं खा रहे हो, तो वो तो इतने नहीं बढ़ रहे, वो क्यों नहीं बढ़ रहे फिर, मतलब तर्क कैसा देंगे ना, सिर्फ और सिर्फ अपने मनोधर्म के द्वारा तर्क देंगे और सिद्धांत। तो ये राजसी यानी कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, बस मैं शास्त्रों के अनुसार भी कोई कार्य करूंगा तो भी मेरी इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए, वो राजसी है। और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहते हैं, और शरीर को मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे सुखी बनाऊं, ऐसा ज्ञान है जो भले दुख देने के कारण, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं शराब पीते हैं और है ना नशा करते हैं और सोचते हैं कि इसी से मुझे सुख मिलने वाला है, हालांकि वो वास्तव में क्या होता है आपको दुख का कारण, अभी वो क्या है डेफिनेटली आपको दुख देगा। ऐसा ज्ञान जो तमोगुणी ज्ञान है ना वो शुरू से लेकर आखिर तक भगवान ने बताया कि वो अंधकारमय होता है, वो आपको कभी भी सुख नहीं देगा। लेकिन जो ये ऐसा सोचते हैं कि ये कार्य करके, जैसे नशा करके या फिर इस तरह के कार्य करके हम सुखी अपने शरीर को कर आनंद प्राप्त करेंगे, तो ये तामसिक ज्ञान कहलाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।